हज का तो हुक्म ये है ना कि जैसे ही इस्तेआत पाई जाए, इतनी गुंजाइश हो तो उसी साल हज करें। हज में ताखीर करना गुना, और मुसलसल कई सालों तक ताखीर की तो फिर तो फासिक और मर्दूद शहादत, शरण इसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं।
और मतलब ये भी है ना कि अगर किसी के पास रकम आई और हज उसने नहीं किया, अब अगर वो रकम भी चली गई तो अब उसको फिर भी हज करना होगा।
हाँ, वो हज तो उस पर फर्ज ही रहेगा,
ठीक है।
यानी हज फर्ज होने के बाद यूं साकित नहीं होता कि रकम उसकी जाया हो जाए। और फिर ये हज में ताखीर करना और यूं हज ना करना, इसकी वईद भी बड़ी शदीद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि जो हज करने की ताकत रखता हो और उसे ना कोई जाहरी रुकावट हो, ना उसको कि बादशाह की तरफ से ऐसी रुकावट हो और ना कोई और हाजत हो जो उसको रोक दे, इसके बावजूद वो हज ना करें, तो फरमाया कि चाहे वो यहूदी होकर मरे चाहे ईसाई होकर मरे,
ताखीर जो की वो तौबा भी करनी होगी,
उसकी तौबा भी करनी होगी। और इसी में एक दूसरी बात अर्ज करूंगा, जैसे आपके मुशाहदे में भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर हज फर्ज होता है, लेकिन वो उम्रे ही कर रहे होते हैं।
जी हजरत, ये बिल्कुल सही फरमाया।
उम्रा वो हर रमजान में कर रहे होते हैं और हज फर्ज होता है वो कर नहीं रहे होते। एक या दूसरी ये होती है, बाद वक्त क्या होता है कि एक आदमी के पास इतनी रकम है कि वो हज करे और उस पर हज फर्ज है,
ठीक है,
लेकिन उसको क्या करना है कि उसको अपनी वालिदा को, अपनी बीवी बच्चों को साथ उम्रे पे ले जाना है।
जी जी जी।
अब वो अपने उम्रे की, अपने हज की रकम उन पे खर्च कर देता है कि वालिदा को उम्रा कराना है, वालिद को कराना है, बहनों को कराना है, भाई को या बीवी को या बच्चों को। तो अब ऐसा करना जो है ये जायज नहीं है, क्योंकि जिन दिनों में हज की ये दरख्वास्तें जमा होती हैं उन दिनों में उसके पास रकम थी, तो अब उस पर हज फर्ज हो चुका है।
पहले वो अपना